रेडियो मधुबन पर आप तैयार हो जाइए अपने संस्कृत पाठ के लिए, जिसका नाम है पठामी संस्कृतम। मित्रों, हम बात कर रहे थे भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोकों की जिसमें भगवान ने अर्जुन से अपने भक्तों के गुणों का बखान किया है और बताया कि कैसे भक्त उन्हें प्रिय हैं। तो हम देख रहे थे कुछ 7-8 श्लोक जिसमें भक्त के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो सारे शब्द प्रायः देव शब्द की तरह उनका चलन है, अकारांत पुल्लिंगी, और उनके रूप भी देवाह की तरह ही हैं। ऐसे 4 श्लोक हम देख चुके और अगले 4 हम आज देखेंगे। मित्रों, पीछे हमने ये देखा कि किसी पूरे के पूरे श्लोक में कैसे सारी द्वितीया की ही विभक्ति लगी थी, कभी देखा कि चतुर्थी की विभक्तियां लगी थी, कभी देखा संबोधन लगे हुए थे। तो ये श्लोक ऐसे हैं, 12वें अध्याय में आते हैं भगवद गीता के, जिनमें इसी देवाह शब्द की तरह सारे अन्य शब्दों के रूप हैं। तो भगवान अर्जुन से अपने भक्तों के विषय में कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। अब देखो, यहाँ जब हमारा कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है, तो ऐसे कर्ता के लिए जो हमारा वर्तमान काल का एक वचन का क्रिया का रूप होगा, वो सारे रूप यहाँ पर क्रियाओं में दर्शाए हैं। यो न हृष्यति, जो ना तो आनंद करता है, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न किसी बात की आकांक्षा रखता है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों को ही परित्याग करता है या समान दृष्टि से देखता है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। भगवान आगे कहते हैं, समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात जो शत्रु या मित्र के लिए समदृष्टि रखता है, अर्थात दोनों में से किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखता है, तथा मानापमानयोः, मान और अपमान दोनों में ही जो समदृष्टि रखता है, दोनों को एक ही तरह से स्वीकार करता है, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, जो शीत या उष्ण, सुख या दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, संग विवर्जितः, और जो समस्त संगति से, समस्त संगतियों के मोह से विमुक्त है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब यहाँ पर मानापमान यो हो, मान अपमान दोनों में समबुद्धि, इस अर्थ से यहाँ पर सप्तमी की विभक्ति आई है। इसी तरह से शीतोष्ण सुख दुखेशु, यहाँ पर भी सप्तमी की विभक्ति है, मान और अपमान में द्विवचन है, और सुख और दुख क्योंकि कई तरह के होते हैं, तो बहुवचन के प्रयोग के लिए सुख दुखेशु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में ही बहुवचन का प्रयोग किया गया है। भगवान आगे कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। तो जिसने लोगों से मिलने वाली निंदा और स्तुति दोनों को ही एक ही तरह से तुलना करके दोनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया एक ही तरह से रखी हो, उन दोनों के प्रति मौन ही रखता हो, और संतुष्टो येन केनचित्, जो भी मिले उसमें संतुष्टि रखता हो, अनिकेतः, जिसका कोई घर नहीं है, अर्थात जिसका कहीं भी मोह किसी वस्तु में अटका हुआ नहीं है, स्थिरमति ही, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियः, ऐसा नर, ऐसा भक्त वह मुझे प्रिय है। और इसी अध्याय के अंत में अपने सभी भक्तों के विषय में कहने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। यह जो सारी अमृत के समान धर्म की बातें अर्जुन मैंने तुम्हें समझाई हैं, ये जैसा मैंने कही उनको उसी तरह से पर्युपासते ग्रहण करके जो उपासना करते हैं। श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। श्रद्धधाना जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, मत परमा मुझे ही परम तत्व मानते हैं, ऐसे जो जो मेरे भक्त हैं वह मुझे अतीव प्रिय हैं। तो यहाँ पर प्रियाहा बहुवचन लगाया है, सभी ऐसे भक्तों के लिए कहा है कि ऐसे भक्त जो मुझ में ही श्रद्धा रखते हैं वह मुझे अति प्रिय होते हैं। तो हमने आज भगवद गीता के साथ साथ व्याकरण की बात भी कुछ सीख ली, और तुम्हें याद होगा कि पहले हमने लकारों के विषय में पढ़ना आरंभ किया था और फिर उसे अभी पूरा नहीं किया है। तो मित्रों, आज हम अपने लकारों की पढ़ाई को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा कि लृट लकार सामान्य भविष्यकाल को दर्शाता है, पर लृंग लकार एक विशेष प्रकार के भविष्यकाल को दर्शाता है, जिसे हेतु हेतु मद भूत ऐसा नाम दिया गया है। और इसका रूप ऐसे होता है कि यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, यदि ऐसा होता हो तो वैसा होता है। इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो लृंग लकार, जहाँ पर एक जगह हेतु है और एक जगह उसका फल है, इस प्रकार का यह लकार है। तो इस लकार के हम जब कुछ उदाहरण देखेंगे तब इस लकार की सुंदरता हमारी समझ में आएगी। तो ये उदाहरण हम देखेंगे। निशाश्चेत तमस्विन्यो न अभविष्यन्, निशाश्चेत तमस्विन्यो न अभविष्यन्, को नाम चंद्रमसो गुणम व्यज्ञास्यत्। यहाँ चेत शब्द आया है जिसका अर्थ है यदि। तो निशाहा चेत, ये संधि है, संधि से बना निशाश्चेत। और निशाहा अर्थात निशाएं, रातें, बहुवचन है। निशाश्चेत तमस्विन्यो न अभविष्यन्, अभविष्यन् ये बहुवचन है क्योंकि हम रातों की बात कर रहे हैं, कई रातों की बात कर रहे हैं। और इसका रूप देखो, अभविष्यन् यहाँ पर थोड़ा सा लगे कि भूतकाल का भी, ये थोड़े से भूतकाल के रूपों के भी जैसा है और थोड़ा सा भविष्यकाल के रूप के जैसा भी है। तो ये है हेतु हेतु मद्भूत भविष्यकाल लृंग लकार का रूप। तो कवि कहता है कि अगर निशाएं तमस्विनी अर्थात अंधकार युक्त ना होती तो चंद्रमा के गुणों का परिचय किस प्रकार हो पाता। को नाम चंद्रमसो गुणम व्यज्ञास्यत्, तो फिर कौन चंद्रमा के गुणों को जान पाता। तो यह रूप है लृंग लकार का। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि शिववीरो स्वयं ईदृश ऊर्जस्वलः न अभविष्यत् तत्कथं कल्याणदुर्गं स्वहस्तगतं अकरिष्यत्। अर्थात यदि वीर शिवाजी स्वयं ही इस प्रकार ऊर्जस्वल या ऊर्जावान न होता, तब किस प्रकार वह कल्याण दुर्ग को स्वहस्तगत अर्थात अपने कब्जे में कर लेता। इसे फिर से सुनते हैं। यदि शिववीरो स्वयं ईदृश ऊर्जस्वलः न अभविष्यत् तत्कथं कल्याणदुर्गं स्वहस्तगतं अकरिष्यत्। तो हमने यह लृंग लकार के दो उदाहरण सुने। मित्रों, हम आज का अपना रेडियो मधुबन का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। लीना मेहंदले को अनुमति दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। आप तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए।